ओबीजांकुर जनना भोबीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायश्च ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
हम सभी लोगों के सामने एक बाह्य जगत है जिसे हम रोज देखते हैं और हमारे पास इस बाह्य जगत की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनका कि उपयोग हम अपने जीवन में रोज करते हैं। लेकिन इस बाह्य जगत की उपलब्धियां और इस बाह्य जगत का विस्तार न हमारे मन को भर पाता है, न हमें कोई शांति और संतोष दे पाता है। एक और जगत है जो कि दिखाई नहीं पड़ता, वो आंतरिक जगत है, उसका विस्तार भी अनंत है। लेकिन उस आंतरिक जगत की तरफ हम सबका ध्यान नहीं जाता। हमारे जीवन में इस बाह्य जगत की उपलब्धियां ही हमें श्रेष्ठतम जान पड़ती हैं। लगता है कि अगर मुझे इस बाह्य जगत में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी तो शायद मेरा जीवन अच्छा, सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। ये अगर कोई कहे कि हमारा भ्रम है तो हम सहसा मानने तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अनुभव तो यही है कि इस बाह्य जगत में भी मैंने बहुत प्रकार के सुख पाए हैं। बहुत प्रकार के सुख पाए होंगे, बहुत प्रकार की शांति पाई होगी, लेकिन एक ऐसा सुख, एक ऐसी शांति जिसके पा लेने के बाद फिर न कोई दुख होता है, न कोई अशांति होती है, उसकी खोज व्यक्ति को हमेशा से है। हम सब भी बार बार अपने जीवन में इस बात का विचार करते हैं कि हमने जो कुछ भी सुख पाया, क्या उसके पीछे फिर कभी हमें दुख नहीं मिला? हमने जिन चीजों में शांति मानी, क्या उसके बाद उन्हीं चीजों में हमने अशांति महसूस नहीं की है? लेकिन ये जो हमारा अनुभव है वो बहुत बहुत छोटा पड़ जाता है जो संसार का, बाह्य जगत का, उपलब्धियों को प्राप्त करने का जो हमारा सुख है वो हमें ज्यादा बड़ा मालूम पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमारे अपने संस्कारवश या हमारी अपनी वर्तमान की पुरुषार्थहीनता कहें या कि वातावरण का प्रभाव कहें, हमें जो वास्तविकता है वो दिखाई नहीं पड़ती। वो जो आंतरिक जगत है उसको जानने की कोई आंख हमारी खुल नहीं पाती। हम तो इन दो आंखों से जो देख पाते हैं उतना ही देख करके और सोचते हैं कि शायद जीवन इतना और ऐसा ही है, हम इससे किसी बेहतर जीवन की न तलाश कर सकते हैं न वो हमें प्राप्त हो सकता है, व्यर्थ है। अगर कोई ऐसा कहता है कि कोई आंतरिक जगत है और उसमें बहुत शांति है, अगर हम पहुंच जाएं तो हमें ऐसा विश्वास नहीं होता, कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक एक अंधे आदमी से ये कहा जाए कि तुमने कभी रोशनी देखी, वो कहेगा अरे किस रोशनी की बात कर रहे हो, मेरे अकेले आंख नहीं है और बाकी चीजें तो मेरे पास हैं, जरा तुम उस रोशनी की आवाज करके सुनाओ, मैं सुन लूंगा, मेरे कान तो दुरुस्त हैं, मुझे उस रोशनी की कोई ना कोई सुगंध तो होगी, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ आंखों से ही देखने में मालूम पड़े, मैं सूंघ के पता कर लूंगा। अच्छा लाओ लाओ, अगर तुम उसकी सुगंध नहीं दे सकते तो जरा निकट लाओ, मैं उसको छू के देख लूंगा, उस प्रकाश को, उस रोशनी को। लेकिन ना उसे छू के उस रोशनी का परिचय दिया जा सकता है, न चख करके, न सूंघ करके, न उसे कानों से कोई सुन करके उसका परिचय प्राप्त कर सकता। उसके लिए तो जरूरी है कि उसकी रोशनी वापस आ जाए आंखों में और वो देख चुके, देख सके बाहर का प्रकाश। ठीक ऐसे ही जिस दिन हमारी अंतरंग की आंख खुलेगी तब मालूम पड़ेगा कि ये जो बाह्य जगत की उपलब्धियां हैं वो मुझे कभी संतोष नहीं दे पाएंगी, न कभी शांति दे पाएंगी। मेरे भीतर ही है शांति और सुख का अपार और असीम भंडार, लेकिन इसके लिए आंख खुलना बहुत जरूरी है। कब किसकी आंख खुलेगी कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आंख खुलने से पहले ही आंख न खुल पाए इस बात के इंतजाम हमने कर रखे, सबने कर रखे, बचपन से हम ऐसे ही इंतजाम करते हैं। जब एक राजा के यहां राजकुमार ने जन्म लिया तब राजा को चिंता होती है कि ये राजकुमार अपने भविष्य में क्या क्या उपलब्ध करेगा। ज्योतिषियों को बुला करके वो पूछते हैं कि इस राजकुमार का भविष्य कैसा है। उन्होंने कहा कि बहुत उज्जवल है और सम्राट बनेगा ये, राजा अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन सावधान रहना, इसकी जिस दिन आंख खुल जाएगी उस दिन घर छोड़ देगा। अरे तो क्या जीवन भर अंधा रहेगा, इसकी आंख नहीं खुलेगी क्या? बोले नहीं नहीं, आंखें तो दोनों दुरुस्त हैं, रोशनी तो उसमें पर्याप्त है, लेकिन भीतर की आंख जिस दिन खुल जाएगी उस दिन ये सब छोड़ के चला जाएगा, पूरा राजपाट छोड़ के चला जाएगा। इसलिए अब घबराया राजन, सम्राट बन जाएगा इसमें खुशी है, लेकिन किसी दिन ये संसार के सम्राट पने को भी छोड़ करके चला जाएगा, इस बात से तो सम्राट भी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा ज्योतिषियों से कि कोई उपाय कि आंख ना खुल पाए, कोई उपाय कि जिससे कि भीतर की आंख ना खुल पाए। उस उदाहरण में तो हमें लगेगा कि कैसा रहा होगा राजा, लेकिन अपने जीवन में झांक करके देखें, अपनी आने वाली पीढ़ी की भी आंतरिक जगत से आंख बंद करने के कितने उपाय हमने कर रखे। हमने ना अपने आंतरिक जगत से स्वयं परिचित होने का कोई पुरुषार्थ किया है, ना ही हमने अपने उस जिस जगत में सुख और शांति, जहां की दुख का प्रवेश नहीं है, जहां अशांति का प्रवेश नहीं है, उस जगत में, उस अपनी अंतरंग अनुभूति के जगत में कभी प्रवेश करने का स्वयं पुरुषार्थ किया है, या आने वाली पीढ़ी को उसका कोई मार्ग दिखाया है? हमने तो दिखाया है कि दौड़ो, बाह्य उपलब्धियां जितनी हो सके तुम पालो, तुम्हारे भीतर सुख और शांति है, उसका भी कोई उपाय तुमने किया या नहीं इसके बारे में हम कभी अपनी पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को बैठ करके कोई सलाह ही नहीं देते। उस पिता ने भी कोई बहुत बेजा बात नहीं की, सभी तो करते हैं ऐसा अपने बच्चों के साथ। ज्योतिषियों ने कहा कि उपाय है इसकी आंख ना खुले, इसके लिए जरूरी है कि इसके सामने कोई भी दीन दुखी जीव, वृद्ध व्यक्ति, जर्जर शरीर वाला इसके सामने ना आए, वरना इसकी भीतर की आंख खुल जाएगी। दूसरा इंतजाम कि कोई भी मृत देह, कोई भी मृत व्यक्ति इसके देखने में ना आए, वरना भीतर की आंख खुल जाएगी। और तीसरी चीज, इसको अपने बारे में सोचने के लिए अवसर ना दिया जाए, खाली ना छोड़ा जाए, इसको नहीं तो इसकी भीतर की आंख खुल जाएगी। और राजा ने सारे इंतजाम कर दिए। राजकुमार जैसे जैसे बढ़ने लगा, उसके पास जो उसकी सेवा में परिचारक थे, कोई भी वृद्ध नहीं था, सब युवा थे। कोई भी मुरझाया हुआ फूल तक उसके सामने नहीं रखा जाता था, सब सुगंधित खिले हुए ताजे फूल रखे जाते थे, ताकि कोई मुरझाई हुई चीज या कि तक कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई दुखद स्थिति देख करके आंख ना खुल जाए। सारे ऐसे इंतजाम कर दिए। मृत व्यक्ति के तो देखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि राजमहल से बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और रही बात समय की, तो उसके चारों तरफ शराब और अम्यूजमेंट के सारे साधन जुटा के रख दिए कि अपने बारे में विचार करने का उसे वक्त भी ना मिले। और हमने क्या किया है? हमने भी यही किया है अपने बच्चों के चारों तरफ, क्योंकि बच्चों को तो हमें पूरी फैसिलिटीज देना चाहिए, बच्चे जो मांगे वो देना चाहिए। नहीं तो हमने अपने पिता से तो अब परेशानी महसूस की है, हम अपने बच्चे को परेशान नहीं होने देंगे, वो जो चाहेंगे हम वो देंगे, वो बाहर कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाएं और पिए आप समझ रहे हैं, वो कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, और हमें तो सिर्फ उनको, वो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें, उस जो करना चाहें वो करें। हमने आज अपनी आगामी पीढ़ी को भी ऐसा ही, ताकि वे उसी में एंगेज रहें, अपने बारे में सोचने का, अपनी वास्तविकता के बारे में सोचने का उनके पास वक्त भी ना मिले। आज हमारे तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने वाले युवाओं के पास अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अपनी सोसाइटी के बारे में, इवन अपने माता पिता के बारे में सोचने का 5 मिनट समय नहीं है, वो अत्यंत व्यस्त है। उन्हें अपने जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुलाचार के पालन करने तक का वक्त नहीं है, न उन्हें दिन में भोजन करने का वक्त है, न उनके पास भगवान के चरणों में माथा टेकने का वक्त है, उनके पास वक्त नहीं है। वे बाह्य उपलब्धियों की अंधी दौड़ में और हमारे द्वारा प्रेरित होकर के और भेजे जा रहे हैं। मैं यहां आकर के यह चीज देख करके दंग हूं। मैंने भी पढ़ने वालों को देखा है, मैंने भी जितना हो सका है, जितनी क्षमता थी उतना पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इस स्थिति में नहीं पढ़ने की कोशिश की कि मैं अपने भगवान के दर्शन करने ना जा सकूं और मैं रात में बैठकर के भोजन करूं। ऐसे पढ़ने से और ऐसी उपलब्धियों से मेरे जीवन में मैं क्या पालूंगा? ऐसी डिग्री मुझे कौन सा सुख दे पाएगी जिसमें कि मैंने अपने ईमान को दांव पे लगा दिया, जिसमें कि मैंने अपने पूरे जीवन में जो सुख और शांति हासिल की जा सकती थी उस मार्ग को ही छोड़ दिया और अशांति और दुख के रास्ते को मैंने अपना लिया। हम अभी भी सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं, हमारे अपने कर्तव्य हम पहचाने अपनी आगामी पीढ़ी के प्रति। होगा वो पिता जिसने कि अपने बेटे को सम्राट बनाने की फिक्र में, जो सम्राटों का भी सम्राट बन सकता था, उस चीज से वंचित रखने के लिए उसको एंगेज कर दिया, एम्यूजमेंट के साधनों से घेर करके इतनी सारी चीजें दे दी कि उसको अपने बाबत सोचने का वक्त न मिले। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे इंतजाम भी फेल हो जाते हैं अगर किसी के भीतर आत्म ज्योति जाग जाती है, तो भीतर की आंख खुलना होती है। आज तो 1% लोग हैं ऐसे। अगर हमको बाहर का कोई निमित्त नहीं दिया जाएगा तो उनकी वो आंख भी नहीं खुलेगी। ऐसे विरले ही होते हैं जिनकी की आंख बाहर के वातावरण के विपरीत होने पर भी, एडवर्स कंडीशंस में भी जिनकी आंख खुल जाती है। उदाहरण उनका दे रहा हूं जिनके की तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आंख खुल गई थी। उस राजकुमार की उम्र 20 बरस हो गई। एक दिन उसके आमंत्रण मिला उसको कि युवाओं की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें उसे शामिल होना चाहिए। राजा ने भी सोचा कि 20 बरस तक हमने इसको ऐसा संस्कार दे दिया है, अब तो ये इसकी आंख खुलने की कोई संभावना नहीं। वो एक उम्र होती टाइनी एज 12 से 20 बरस की जिसमें जो संस्कार डाल दो वो जीवन भर रहेंगे, और आज हम कौन से संस्कार डाल रहे हैं? ध्यान देते रहना, आपको कह रहा हूं, हम 20 से 12 से 20 वर्ष जो अपने पास मां को अपनी छाया में, पिता को अपनी छाया में उस बेटे के सिर पे हाथ रख करके उसे व्यतीत करवाना था, वो आज हमने उसी एज में उसे अपने से दूर, अपने प्रेम से वंचित किसी और के प्रेम पाने के लिए भेज दिया है, जहां वो ढूंढेगा, ये ढूंढेगा कि मेरा सुख दुख सुनने वाला समझने वाला कौन है, क्योंकि आपका उसका सुख दुख सुनने समझने वाला उसके पास नहीं है। फिर वो कहीं भी उसको ढूंढ लेगा, उसे जो मिल जाएगा उसकी परख उसको है नहीं, और उसके हिसाब से वो अपने जीवन को आज हो रहा है, ये देख रहे हैं 20 बरस में। और जब वो राजकुमार अपने घर से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई कि उस रास्ते में कोई वृद्ध व्यक्ति दिखाई ना पड़े, उस रास्ते में कोई मृत देह दिखाई ना पड़े, और व्रत के अंदर भी शराब अगर पीने की आवश्यकता पड़े तो वहां उसकी सुविधा है, सारी व्यवस्थाओं के साथ रथ जा रहा है, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। सारे इंतजाम के बावजूद भी वही हुआ कि एक जर्जर देह में कोई वृद्ध चौराहे पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ गया। पहली बार देखा था इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत थी कि ये कौन है, ये मनुष्य है क्या। सारथी से पूछा कि ये मनुष्य है, उसने कहा यह मनुष्य है लेकिन इसकी देह अत्यंत जर्जर हो गई। हां, हर मनुष्य की देह इसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो जाती वृद्धावस्था में। तो सारथी, मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूं, क्या मेरी देह भी इसी तरह से जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो जाएगी। सारथी क्या कहे इतने बड़े राजकुमार से, उसने कहा कि आप भी इसके अपवाद नहीं हैं, इतना ही पर्याप्त था। तब राजकुमार ने कहा कि ठहरो, अब युवाओं की सभा में जाने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे अपनी वृद्धावस्था का एहसास हो गया, क्या करूंगा युवाओं के बीच जाकर के, रथ वापस लौटाओ। और जैसे ही रथ वापस लौटाया कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, पीछे जितनी अर्थियां रोक के रखी गई थी वो सामने आ गई, क्योंकि इस संसार में कोई ना कोई रोज मरण को प्राप्त होता है। हम इग्नोर करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा मरेगा, मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं तो शाश्वत होकर के यहां आया हूं, और एम्यूजमेंट के जितने साधन है जब तक मेरा जीवन है उसको मैं भोग लूं, फिर क्या पता अगले बार ये जीवन मिला कि नहीं मिला और मुझे ये सामग्री मिली कि नहीं मिली। और पीछे मुड़ने पर जब एक मृत देह दिखाई पड़ी तो क्वेश्चन बहुत नेचुरल था, उसने पूछा कि ये कौन है, ये भी मनुष्य है क्या। उसने कहा मनुष्य, लेकिन ये ऐसा अचेत क्यों है, इसे चार लोग उठा के क्यों ले जा रहे, ये मरण को प्राप्त हो गया। तो क्या हर मनुष्य को इसी तरह मरण को प्राप्त होना पड़ता है, क्वेश्चन तो है। उसने कहा हां राजकुमार ऐसा ही है। तब फिर अगला क्वेश्चन जो कि कोई नहीं पूछता, सब यहीं तक पूछ के रह जाते हैं, उस राजकुमार ने कहा कि क्या इसी तरह मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। उसने कहा आप क्या कहूं मैं आपसे राजन, हर मनुष्य को कोई उसका अपवाद नहीं है, मरना ही पड़ेगा। तब कहते हैं कि राजकुमार उसी क्षण रथ से नीचे उतर गए और एक एक कदम रखते हुए, राजमहल निकट ही था, पांव पैदल विचार मग्न, और सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की छत पर पहुंचकर यहां से वहां सारी छत पर चहलकदमी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस जर्जर देह को लेकर के मैं कितने दिन सुख पाऊंगा, इस मृत शरीर को लेकर के मैं कितने दिन, क्योंकि एक दिन ये मर जाएगा, एक दिन ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इससे पहले कि ये जीर्ण शीर्ण हो, इससे पहले कि ये मरण को प्राप्त हो, मुझे वो सुख और शांति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसमें कि न जर्जर होने और न मरने की कोई संभावना। ये विचार उनके भीतर आ गया। अब सारी सामग्री बाहर पड़ी है, अब अपने बारे में विचार करने की शुरुआत हो गई, कोई नहीं रोक सका। कहते हैं कि फिर वो सच्चाई की खोज में निकल गए। ये राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की घटना है, सब जानते हैं। और फिर हम अपने जीवन में झांक करके देखें, हमारे अपने जीवन में हमने क्या इंतजाम करके रखे हैं जिससे कि हमारे उस आंतरिक जगत की आंख न खुल पाए, जिससे कि हमारे भीतर यह एहसास ही ना हो पाए कि इससे भी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। हमने तो यही मान लिया है कि जो जीवन हम जी रहे हैं शायद जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका यही है। नहीं, इससे भी बेहतर तरीका है जहां दुख नहीं है, रोग शोक नहीं है, जहां जन्म और मरण नहीं है, जीने का बेहतर तरीका तो वो है। क्या हम उसके लिए कोई उपाय करेंगे? उसके लिए हमने उपाय किए हैं, कुछ धार्मिक उपाय हैं जो हमें बताए गए हैं, ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग उन्हीं चीजों को दोहराने में लगे, उन्होंने भी कोई सुख और शांति हासिल कर ली हो ऐसे भ्रम में न रहे। जब तक कि हमारे आंतरिक जगत को देखने की आंख नहीं खुलती तब तक हम बाहर कितनी भी क्रियाएं दोहरा लें वे क्रियाएं भी हमारे जीवन को सुख और शांति नहीं दे पाती। ये बात भी हमें विचार करने की है। वो आंख कैसे खुलेगी, वो हमारे मन में कैसे विचार आएगा? वो ऐसे ही आएगा जब हम संसार की वास्तविकता को देखेंगे। जो चीजें हमारे कांटेक्ट में आती हैं, जो भोग विलास की सामग्री हमारे संपर्क में आती है उसकी वास्तविकता को जानेंगे, और जो शरीर हमें मिला हुआ है उसकी वास्तविकता को हम पहचानेंगे, और तीनों को जो पहचान लेता है उसकी मानिएगा कि आंख खुल गई। फिर वो उन तीनों के बीच रह करके भी, जैसे अपन कहते हैं कि अलिप्त होकर के रहा आता है, ऐसी प्रक्रिया हमारे जीवन में आएगी, एक सह अस्तित्व की भावना हमारे भीतर पैदा होगी। हम अकेले यहां नहीं जी रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग जी रहे हैं। मैं इस तरह जीवन जीऊं जिससे कि मेरे जीवन जीने से किसी और के जीवन में बाधा ना आए। जो निरंतर अपने जीवन को इस तरह जीता है जिससे दूसरे के जीवन में मुश्किल खड़ी ना हो, उसका जीवन ही आसान होता है। हम देखें, वही अपने जीवन में आंतरिक जगत को जान पाता है। हम तो अपनी बाह्य उपलब्धियों के लिए दूसरे को जीवन को मुश्किल में डालकर सोचते हैं कि हम अपना जीवन आसान बना लेंगे, लेकिन अपने अनुभव से हम पहचाने इस चीज को कि आज तक हमारे अपने जीवन में जो आसानी और जो सुख सुविधा हमने जुटाई है दूसरे को मुश्किल में डालकर, क्या सचमुच उससे हमें कोई जीवन आसान हुआ है कि और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हुई हैं हमारे जीवन में? मैं आपको बिना कोई घटना सुनाए और बहुत कठिन कठिन सी बात कह रहा हूं आज, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं। हम सब अगर एक बार सोचने पे इस बात के लिए मजबूर हो जाएं, रोज दिन भर में 10 मिनट इस बात को सोचने के लिए निकालें, अपनी छाती पर हाथ रखकर किसी कोने में बैठ करके कि मैंने जो पाया क्या सचमुच उसके पा लेने के बाद मुझे सुख और शांति मिली, या कि अभी भी मुझे किसी और सुख और शांति की खोज अभी भी है? अगर मिल गई है तब मुझे कुछ नहीं कहना, तब फिर कल से किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, कल से फिर दुकान जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे शांति मिल गई। लेकिन मेरी तो यात्रा रोज सुबह से शुरू होती है, पता नहीं किस चीज की खोज में मैं रोज सुबह से निकलता हूं, चाहे ऑफिस जाता हूं, चाहे किसी लेमैन की तरह किसी काम पर निकलता हूं, चाहे अपनी दुकान पर निकलता हूं, मुझे खोज अभी भी है। मैं क्या खोजता हूं ये कभी सोचा? सिर्फ थोड़ी सी सुख सुविधा के साधन खोजता हूं और सोचता हूं कि इस सुख सुविधा के साधन से ही मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन जीवन का अनुभव तो कुछ और ही है। हमने रोज रोज अपनी तमाम कोशिशें करके और जो चीज पानी चाहिए है उसे ही हम लगातार मिस करते जा रहे हैं। फिर भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हम कहां मिस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि हां कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल में हमें चेंज लाना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। जिस तरह हम जी रहे हैं वो जीने का ढंग नहीं है, वो तो सिर्फ एक काम निकालने का, जीवन का निर्वाह करने का ढंग है, इससे जीवन का निर्माण नहीं होता है। जीवन का निर्माण होता है जब हमें जीवन और जगत की वास्तविकता का बोध, हमें वो बोध करना चाहिए। एक बार बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे, लोगों ने वहां से जाने के लिए उन्हें मना किया और कहा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, वहां एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। बुद्ध ने कहा क्या करता है? उन्होंने कहा कि इतना बर्बर तरीका है उसका कि जो उस रास्ते से निकलता उसको पहले लूट लेता है, और इतने ही नहीं, पता नहीं उसे ऐसी कौन सी बात मन के भीतर है कि वो लोगों की दसों उंगलियां निकाल लेता है और एक माला पहन रखी उसमें उनको पिरो लेता है, और लोग उसको अंगुली माल कहते हैं। वो अंगुलियों की माला पहन करके और वहां अपना जीवन बिताता है। अपने जीवन के बारे में विचार करना, किस किस को हमने अपने सुख सुविधा के लिए ऐसा ही अपंग बनाया होगा। वो अंगुली माल की कहानी अपनी जगह है, उसने सीधी सीधी उंगलियां निकाल ली होंगी, लेकिन हमने कितने लोगों की उंगलियां बिना निकाले व्यर्थ कर दी होंगी। जितने संसाधन हमारे बढ़ते जा रहे हैं वो उतने लोगों के हाथों को बेकार करते जा रहे हैं, इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। जिन कामों को हम हाथ से करते थे आज उन कामों को सिर्फ बटन दबा के किया जाता है, और हम सोचते हैं कि वी आर वेरी डेवलप्ड, हम बहुत विकसित हो चुके हैं। यही विकास है जहां कि आदमी का हाथ नष्ट कर दिया जाए उसके होते हुए भी, यही विकास है कि पैरों से चलने की शक्ति मिली थी और पैरों से चलना अब मॉर्निंग वॉक के नाम पे होता होगा, बाकी तो नहीं होता। अपनी बुद्धि का उपयोग ना करके हम सारा काम अब सब समझ गए ना, इशारे से सब समझ गए। सामने स्क्रीन है उस पर हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन चीजों का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं निषेध कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं जो इन चीजों का निषेध करूं? बढ़ने दें हम इन चीजों को, लेकिन ऐसा ना हो कि हम इन चीजों के बढ़ते हुए अपने जीवन का विघात कर लें। और अगर ऐसा होगा तो शायद फिर हमें अपने आप को माफ नहीं करना चाहिए। अपनी इस गलती के लिए हम दूसरे से क्या माफी चाहें, हमें स्वयं अपने को माफ नहीं करना चाहिए कि हमने अपनी सुख सुविधा के लिए जो चीजें जुटाई थी वे चीजें हमारे लिए हार्मफुल हो गई, वे चीजें हमारे मरण का कारण बन गई। इस तरह हम थोड़ा सा विचार करें, अंगुली माल सिर्फ उंगलियां निकालता था और तो कुछ नहीं करता। बुद्ध ने कहा मैं जाऊंगा, वहीं से जाऊंगा, मैं देखूंगा। इतना ताकतवर आदमी, अगर मुझे मरना भी होगा तो ऐसे ही ताकतवर आदमी से मरूंगा, क्या दिक्कत है? मरण तो एक दिन निश्चित ही है। और पहुंचते हैं तो अंगुली माल आवाज देता कि ठहरो श्रवण, कहां चले जा रहे हो? बुद्ध जानते थे कि इसकी बात सुनना नहीं है, धीरे धीरे बहुत धीमे हो गए, लेकिन एक एक कदम आगे चलते चले जा रहे हैं। भागा वो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग के कहीं और छुप जाए, और दौड़ करके पास में आया और फिर आवाज दी कि ठहरो श्रवण। तो चलते चलते बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हूं, दौड़ तो तुम रहे हो। और ऐसा कह के बुद्ध सचमुच ठहर गए और अंगुली माल पहुंचा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि ठहरो, तो तुम कहते थे कि मैं तो ठहर गया हूं और चलते चले जा रहे थे। बोले अंगुली माल अब मैं कहता हूं कि मैं तो निरंतर चल ही रहा हूं, ठहरे तो तुम हो। अरे पहेलियां बुझाते हो तुम, मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाला। थोड़ा सा इंप्रेस तो हुआ वो कि ये इतना निडर आदमी, लोग तो मुझे देख करके गिग्गी बन जाती, लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ये मेरे से ऐसे बोल रहा है। मैंने जब इससे कहा चलते चलते तो कहता कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू ही दौड़ रहा है, और मैंने जब ये ठहर गया तब इससे कहा तो कहता कि मैं तो निरंतर चल रहा हूं, तू ही ठहरा हुआ है। अरे अजीब है, बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले अंगुली माल और कुछ नहीं कहना, मैं तो निरंतर सच्चे रास्ते पर चल रहा हूं, तुम सच्चे रास्ते पर चलने से वंचित हो, तुम ठहरे हुए हो, और जब मैंने कहा कि मैं तो ठहरा हूं तो मैं तो संसार के गलत रास्तों पर ठहर ही गया हूं अभी, लेकिन तुम निरंतर दौड़ रहे हो। अरे तुम मुझे ज्ञान सिखाना चाहते हो, मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो, मैं नहीं आने वाला तुम्हारी इन बातों में। सुनो मैं तुम्हारी, बहुत सुंदर हो तुम, हो तो भिक्षु लेकिन अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारी दसों उंगलियां निकालूंगा मैं, और बताओ क्या रखे हो अपने पास। बुद्ध बोले कि कुछ नहीं, मैं तो आई तुम्हारे ही पास। मेरे पास? मेरे से तो लोग दूर भागते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए? मैंने सुना है कि तुम बहुत बहुत शक्तिशाली। अब अहंकार आना शुरू हुआ। अपने पांचों इंद्री के सुख और से क्या मेरी परीक्षा करना चाहोगे? हां मैं चाहता हूं कि जब मुझे किसी के हाथों मरना ही है तो किसी शक्तिशाली के हाथों मरूं, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास। अरे वाह, मैंने तो मरण से डरने वाले बहुत देखे लेकिन इस तरह से अपने मरण को स्वीकार करने वाले तो बहुत कम देखे। वास्तविक जय वो इस अंधी दौड़ से बाहर खड़े होकर के लोगों को दौड़ते हुए देखता है, किस चीज के लिए भाग रहे हैं? सिर्फ शरीर के लिए और कोई कुछ नहीं। अपने पांचों इंद्री के सुख और शरीर के लिए सब अंधी दौड़ में शामिल है। जरा बाहर खड़े होकर के देखें कि ये दौड़ किस बात की है? दो रोटी की ना, वो तो एक बाहर मैंने देखा है कि आसपास कहीं भी मुंह मार के, और एक पशु भी अपना जुटा लेता है दाना, उसमें क्या बात है? पक्षी भी जो है अपना दाना जुटा लेते हैं, कहीं भी पानी पी लेते हैं। इसके लिए इतनी सारी हिसाब किताब करो, कोई बात नहीं। कोई ज्यादा कैसे हम आपको समझा सकते हैं? आपको लगेगा कि महाराज जी को तो सब ऐसे ही लगता है क्योंकि सब छोड़ दिया, कुछ होगा भी नहीं शायद, ऐसे ही बन जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जब अपने पास बहुत सारी इस तरह की सामग्री हो जाती तो अपने लगता है कि नहीं इसमें ही सुख है। पर आएगा किस दिन जब समझ में आएगा। अपन तो बात कर रहे हैं कि शायद किसी को कोई बात से आंख खुल जाए, और आंख खुलने के बाद फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंकुलीमाल, मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जरा सा तुम्हारा बल देख लूं। वो जो सामने पेड़ लगा ना, उसमें से दो पत्तियां तोड़ के लाऊं। अंकुलीमाल, अरे वाह, ये बच्चों का काम मेरे से करवा रहे हो? दो पत्तियां तो कोई भी तोड़ देगा। और सुनो, मुझे ज्यादा मुश्किल में मत डालो, इस तरह तुम भग नहीं पाओगे। मैं जब तक पत्तियां तोड़ने लगूंगा तब तक तुम भगने का सोच रहे हो? नहीं नहीं अंकुलीमाल, तुम उसी पेड़ से मुझे कसकर बांध दो, फिर दो पत्तियां तोड़ दो। अंकुलीमाल ने कहा कि लगता है कि ये भागेगा नहीं, जाकर के दो पत्ती तोड़ करके ला करके दी। बुद्ध ने पीठ पर हाथ रखा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुलीमाल, आधा काम तो हो गया, आधे बल की परीक्षा तो तुम्हारी हो गई, बस इतना और करो, ये दो पत्तियां ज्यों की त्यों उसी वृक्ष पर लगा करके आ जाओ। अब मुश्किल में है अंकुलीमाल, ये वाली शक्ति तो मालूम थी कि दो पत्तियां तोड़ी जा सकती, लेकिन ये शक्ति मेरे पास नहीं है कि मैं फिर से उस पेड़ में ज्यों की त्यों उन दो पत्तियों को लगा करके आ जाऊं। है ये सामर्थ्य? अंकुलीमाल अब तो चरणों में गिर गया। मैं अपने को आज तक बहुत शक्तिशाली समझता था और साबित भी करता था, लेकिन आज मैं कितना कमजोर हूं ये मुझे समझ में आ गया। धीरे धीरे अंकुलीमाल की भीतर की आंख खुल गई। अभी हमारे खुलने में समय लगेगा, क्योंकि हमें तो सत्ता और संपत्ति से प्राप्त होने वाले सुख और समृद्धि और शक्ति पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे पास तो सत्ता और संपत्ति है और हमसे ज्यादा कोई बलवान है ही नहीं। अंकुलीमाल को तो अपने सत्ता और संपत्ति पर जो भ्रम खड़ा किया था उसने वो टूट गया और भीतर की आंख खुल गई। जिस दिन हमारी आंख खुलेगी, हमें भी इन सब चीजों में जिनमें हमें सुख मालूम पड़ रहा है फिर मालूम नहीं पड़ेगा, फिर ये चीजें सिर्फ हमारे उपयोग के लिए होंगी, हम इनके लिए नहीं होंगे। अभी ये चीजें हमारे लिए नहीं है, हम इनके लिए हैं। तभी तो तिजोरी तो आराम से रखी रहती है, हम ही चक्कर काटते दिन रात, चौकीदारी करते। एक एक चीज जो हम संभाल संभाल के रखते हैं उससे तो मालूम यही पड़ रहा है कि चीजों की सेवा करने में लगे हैं, सुबह से शाम तक झाड़ पहुंच करके उनको संभाल करके रखते हैं, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। मैं कितना खराब होता चला जा रहा हूं, मेरी चेतना कितनी मलिन होती जा रही, इसकी चिंता नहीं है। मेरे घर में वो जो उधर जाला लग गया है वो फटकारना जरूरी है, मेरे भीतर कितनी जाला लग जाए उसकी चिंता नहीं। मेरे घर का फर्श गंदा ना हो जाए
मेरी चेतना भले ही कितनी भी गंदी हो जाए इसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं। मेरे कपड़े रोज ड्राई क्लीन होना चाहिए लेकिन मेरी चेतना भी उतनी ही ड्राई क्लीन होनी चाहिए इसकी चिंता नहीं। कभी कभी सोचिएगा, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं, ऐसा भी सोच सकते हैं भाई। और अंगुलीमाल चरणों में गिर गया है और कह रहा है कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे कि मैं ये टूटे हुए पत्ते जोड़ सकूं। है क्या आपके पास ऐसा कोई टेक्निक? बुद्ध ने कहा कि आओ मेरे साथ, और कटोरा हाथ में दे दिया। अब चीवर है, थोड़े से वस्त्र हैं और कटोरा है, भिक्षु बन गया अंगुलीमाल। कौन करेगा विश्वास? कोई नहीं कर रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा। सब तक सब दूर खबर पहुंच गई है कि अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है। अरे वो कहीं हो सकता है भिक्षु, दूर रहना उससे, ये कोई उसकी चाल हो सकती है। जीवन में जिस दिन आंख खुल जाएगी और संसार ऐसा मालूम पड़ने लगेगा और हम संसार से अलग थलग खड़े हो जाएंगे, तब बाकी लोग हमें भी ऐसा ही समझेंगे। ये ध्यान रखना, ये हमेशा से होता चला आ रहा है। जो संसार की वास्तविकता समझ करके उससे दूर खड़ा हो जाता उसे लोग आउट ऑफ डेट कहते हैं, उसे लोग पुरानी पीढ़ी का समझते हैं। आज जैसे कि रात में नहीं खाने वाले को बैकवर्ड और रोज मंदिर जाने वाले को बैकवर्ड समझा जाता है, ऐसे ही फॉरवर्ड होने के मायने यह है कि मुझे अपने अम्यूजमेंट से फुर्सत नहीं है तो मैं फॉरवर्ड, मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए यहां से वहां भागता हूं, मैं फॉरवर्ड। ये हमारा सोच डेवलप हो गया है और यही सोच हम आने वाली पीढ़ी के मत्थे भी विरासत में दे रहे हैं, विरासत में, फोकट में, बिना किसी एफर्ट के उनको यही सोच हम बांट रहे हैं कि हम तो नहीं पा पाए, तुम पा लेना। हम तो जरा एक घर भी ठीक से नहीं बना पाए, तुम आईआईटी कर लो, किसी बढ़िया कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाओगे या कि कोई बढ़िया इंजीनियरिंग की पोस्ट मिल जाएगी, 50,000 सैलरी और 1,00,000 सैलरी पाओगे, फिर बनवा लेना एक बढ़िया सा एक भवन, उसमें रहना। हम तो जिंदगी भर टपकते पानी में और रहे, हमने तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। तुम दौड़ो, ये मकान गिरवी रख करके भी तुम्हें पढ़ाना पड़े तो पढ़ाऊंगा, हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं। कहने का अवसर आपने दिया है, शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं, जो जीवन में रोजमर्रा के जीवन में घटित हो रही उस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। और कर जरूर रहे हम धर्म की बातें, लेकिन हमारे जीवन में जो वास्तविकता आनी चाहिए थी उससे हम वंचित हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में जो चेंज आना चाहिए था वो ज्यों का त्यों है, बल्कि और हम उसी दौड़ में शामिल होने वाली स्टाइल अपने जीवन में अपना रहे। हम एडवांस नहीं हुए हैं, हम मॉडर्न नहीं हुए हैं। कहने को जरूर है कि हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं या कि बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत डेवलप हो गए, लेकिन देखें हम आत्मा में उतने ही अविकसित हैं, हम आत्मा के मामले में उतने ही अंधे हैं, हम आत्मा के मामले में उतने ही निरक्षर हैं, भले ही हम कितने पढ़े लिखे। अपनी चेतना के विकास के मामले में जो हमारा अंधापन और हमारी निरक्षरता है, जो हमारी अज्ञानता इग्नोरेंस है, उसका क्या उपाय है? बुद्ध से पूछ रहा है अंगुलीमाल कि कैसे कैसे करूं जिससे कि मुझे वो सामर्थ्य मिले, मैं जोड़ना सीख जाऊं। बन गया है वो भिक्षु, ले जाते हैं उसे उसी गांव में। बुद्ध रास्ते से निकल रहा है, अकेला है अंगुलीमाल, भिक्षु बना हुआ है, कोई भिक्षा देने तैयार नहीं, बल्कि लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, बच्चों को ऊपर बंद कर लिया कि पकड़ के न ले जाए, और छतों पर जाकर के लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। घर के नीचे से निकलता है तो लोग उसके ऊपर गंदगी डाल देते हैं, फिर भी अंगुलीमाल शांत है, मुस्कुराहट ज्यों की त्यों है, क्योंकि मालूम पड़ गया है, अपनी अंतरंग की सामर्थ्य मालूम पड़ गई है। बस जरा सी उसको चीज है कि वो जो शक्ति है जिससे सबको जोड़ा जा सके, वो शक्ति और मुझे मिल जाए। अपने से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति सारी सृष्टि से जुड़ जाता है, और जीने का यही ढंग सबसे बेहतर ढंग है। सबसे कट करके अपना एक छोटा सा घर बना करके आउटसाइडर की तरह आइसोलेटेड होकर के आज जो फैमिली में जीने की हमने एक परंपरा डाल रखी है, माता पिता भी दूर रहो, बस हम हैं, हमारे 18 साल से छोटे बेटे हैं, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैमिली की स्टाइल है वो इंडिया गवर्नमेंट या हम इंडियंस के अंदर भी आ गई है। न चाचा है घर में, न ताऊ है, न दादा दादी का कोई स्थान है, न भाई बहन का स्थान है, कोई स्थान नहीं है। मैं, मेरी जीवन साथी, मेरे छोटे बेटे, जब वे बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख करके विवाह करके उनका अलग घर बना दूंगा हम दोनों, ताकि जीवन के अंत तक मेरे सुख सुविधा में कोई कमी ना आ पाए, मैं भोग विलास के लिए मुक्त रहूं। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन कहने के लिए आपने मजबूर किया है, आप क्षमा करें, मैं ऐसा बहुत कम बोलता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर यहां का अनुभव मुझे इस तरह बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को देख करके यहां पर जो 40-50 हजार कहते हैं कि बाहर से आए हैं, लेकिन उनके पास 5 मिनट नहीं है कि वे दो बातें धर्म की सुन सकें, वे भगवान के लिए माथा टेक सकें कि वे दिन में शांतिपूर्वक अपना भोजन ग्रहण करके और पढ़ाई कर सकें, नहीं उनके पास कोई वक्त नहीं, वे लगे हुए हैं अपने किसी संसार में अलग। हमने क्या दिया उनके लिए, जो हमने विरासत में पाया वो भी हम नहीं दे पाए, बल्कि हमने उन्हें संसार दिया है, संसार से पार होने के रास्ता प्राप्त करने के लिए हम यहां आए थे, हमने उनका संसार बढ़ाने में मदद की, नहीं हमें सोचना चाहिए। और तमाम लोग पत्थर फेंक रहे हैं अंगुली माल पर, अंगुली माल लहू लुहान हो गया है और अब तो उसकी शक्ति भी नहीं रही, 8 दिन से भोजन भी नहीं मिला है और रोड के किनारे गिर गया है। इससे पहले कि अंगुली माल गिरे, बुद्ध तो देख रहे थे कि देखें अंतिम स्थिति क्या होती है, और बुद्ध आकर के अंगुली माल के पास खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही अंगुली माल के पास आके खड़े होते हैं सारे लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अरे बुद्ध इनको संभाल रहे हैं, हमने इनको लहूलुहान कर दिया, हमने अभी तक इसको अंगुली माल माना और ये तो इसे भिक्षु मान के संभाल रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, सिर पे हाथ फेर रहे हैं, अपन ने गलती करी। सब धीरे धीरे उतर करके दरवाजे खोल खोल करके आकर के इकट्ठे होने लगे हैं। अंगुली माल अभी तक अचेत था, बुद्ध ने उसे होश में ला करके कहा जागो अंगुली माल, होश में आओ, देखो देखो वो सामर्थ जो कहते थे ना कि वो सामर्थ कैसे मिलेगी जिससे कि सारे लोग जुड़ सकें, मैं सबको जोड़ सकूं, उन टूटे हुए पत्तों को भी जोड़ सकूं। अंगुली माल देखो, सब तरफ देखो, आंख खोल के देखता है, उसे घेरे हुए चारों तरफ लोग सिर नीचा किए आंखों से आंसू बह रहे हैं और खड़े हुए। तब उसे मालूम पड़ा कि हां सचमुच यही जीवन सच्चा जीवन है जिसमें कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीता हूं। कल तक तो ऐसे जीता था कि हर आदमी मेरे से बचता था क्योंकि मैं उसकी क्षति पहुंचा करके अपना जीवन जीता था, आज मैं अपना जीवन इस तरह जीता हूं कि मुझे अगर क्षति भी पहुंच जाए तब भी मैं किसी और के लिए जीवन को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। जीवन जीने का एक ढंग यह भी है, कभी हम कोशिश करें अपने शेष जीवन में कि ऐसा भी जीवन जीने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, और कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो हमें एक संदेश देना ही चाहिए कि जीवन जिस तरह तुम जी रहे हो वो तो एक ढंग है ही, एक और ढंग है जीवन जीने का जो इससे भी बेहतर है, वह भी तुम्हें मालूम रहना चाहिए ताकि कभी उस ढंग से भी अपना जीवन जीने की कोई प्रक्रिया हम कर सकें। इसी भावना के साथ कि शेष जीवन हम इस ढंग से जिए कि हमारा जीवन भी आसान हो और हमारे जीवन से किसी और के जीवन में कोई मुश्किल खड़ी ना हो, उसका जीवन भी आसानी से बीत सके। भगवान महावीर स्वामी ने यही बात कही, हम ठीक ढंग से जिए, इस तरह जिए कि किसी दूसरे के जीने में मुश्किल ना हो, उसे भी हम जीने दें और स्वयं भी हम बेहतर ढंग से जिए। अगर ये छोटा सा संदेश भी हम अपने जीवन में अपनाना चाहें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता। इसी भावना के साथ आज मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा समय हो सकता है ज्यादा भी हो गया हो, क्षमा करें, 5 मिनट और ले रहा हूं। अपन सब एक साथ मिल बैठ करके इस भावना के साथ नमोकार करेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारा जीवन अच्छा बने।
ओ नमो अरिहंतानम् ॐ नमो
सागर मुनि महाराज
मिथ्या तम नास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु शिव कानी है शाहो द्रव्य जान वेखो बंद विध भान वेखो सफर पहचान वेखो परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेखो जीव के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही गिन वाणी है जवानी के ज्ञान दे सूझे लोका लो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रमा कुले इन कहे